आज एकादशी का दिन है, पवित्र दिन है, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हर एकादशी को प्रभुपाद लीलामृत भागवतम की जगह से प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ पे आज क्रम के अनुसार पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत 21वां अध्याय, शीर्षक है लोअर ईस्ट साइड के आगे। रात के 11 बजे थे और स्वामी जी के अपार्टमेंट के छोटे से रसोई घर में एक ही बत्ती जल रही थी। स्वामी जी ऊपर के कमरे में कीर्तनानंद तथा ब्रह्मानंद का भोजन बनाना सिखा रहे थे, क्योंकि अगले दिन रविवार को वे एक सार्वजनिक भोज देने वाले थे। कीर्तनानंद ने सुझाया था कि जिसे प्रीति भोज के नाम से विज्ञापित किया जाए, और स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि कुछ लोग का विचार था कि स्वामी जी का प्रीति भोज कहा जाना सुनने में विचित्र लगता था, भक्तों ने पड़ोस भर में विज्ञापन पत्र लगा दिए थे और स्टोर फ्रंट की खिड़की की ओर संकेत बना दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि इतना भोजन बनाने हैं जो कम से कम 50 लोगों के लिए पर्याप्त हो। उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रीति भोज इस्कॉन के महत्वपूर्ण अंग बन जाने चाहिए। लगभग ये पहला प्रीति भोज संडे का इसी अध्याय में आया है, इसके लिए लगता है कि ये प्रीति भोज का पहला भोजन था संडे का, जो हम लोग यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप का प्रीति भोज बनाते हैं हर सेंटर में इस्कॉन के, ऐसे प्रीति भोज पहला था ऐसा लग रहा है ये पढ़ने में। तो हम देखते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था अपना जो भगवत दर्शन आता है उसमें, तो भगवत दर्शन में एक प्रभु जी ने ये प्रीति भोज के कैसे वो भक्त हुए वो बता रहे थे, उसका अपना लेख था, उसका नाम था टॉम और उसने वो शिकागो के रहने वाले थे अमेरिका में, तो उसने शिकागो में रहने वाले थे, तो उसने एक दिन वो ऐसा सोच रहे थे कि वो मानते थे ईसाई धर्म में, लेकिन वो सोच रहे थे पादरी के पास जाते थे कि सत्य मुझे बताइए रियल में सत्य क्या है, तो उसको कोई बताता नहीं था तो उसके लिए वो घूम रहा था चारों तरफ, तो उसके पिताजी ने उसका जो वर्तन था वो विचित्र लगा तो उसने एक अलग खेत ले दिया, उसने जमीन ले दिया थोड़ा, और उसको बोला कि तू इधर रहने लायक नहीं है गाँव में और तू दूसरी जगह पर चला जा। तो चला गया वो खेत में और उधर टेंट भी बना दिया उसने, वो टॉम ने टेंट भी बना दिया। टेंट बनाने के बाद उसने एक उसका मित्र था पक्का जो जर्मनी कुत्ता था वो डॉबरमैन, देखने ही लोग डर जाते थे उससे, देखते ही इतना डर जाते, वो भयानक था इतना बड़ा, तो उसके साथ वो रहने लगा उधर टॉम। और ऐसे लगता था एक दिन उसको कि एक कुत्ता ने किसी वस्तु को मारा है, और वो टॉम जो देखने के लिए उधर गया, वो बार बार उधर जाता था और भौंकता था और सूंघता था वो वस्तु को, तो उसने लगा कि जानवर मरा पड़ा हुआ होगा या तो सुआ हुआ कुछ हुआ होगा मरा हुआ, इसलिए वो उधर गया और देखा तो वहाँ प्रभुपाद की किताब थी, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण, उसने देख लिया उल्टी पड़ी थी किताब, तो उसने प्रभुपाद का फोटो देख लिया। प्रभुपाद का फोटो देख के वो आश्चर्यचकित हो गया कि इस जंगल में ये खेत में ये बुक कहाँ से आई, तो उसके ऊपर लिखा था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो उसने पढ़ा, अंदर संस्कृत के श्लोक थे तो वो पढ़ने में बहुत उसको कठिनाई थी, लेकिन उसने अंदर सब अलग अलग वार्ताएं थी भगवान के बारे में, जो लीलाएं थी वो पढ़ी। वो पढ़ने के बाद उसको लगा कि सत्य वही है जो है श्री कृष्ण, तो उसके बारे में वो पढ़ता गया, उसको पता नहीं था कुछ, लेकिन एक दिन वो गुनगुनाते थे और उसके पास पैसा बहुत था, उसके पिताजी ने पैसा बहुत देते, तो इतना कार चला था बस खाली खाली, दो दो तीन तीन घंटा घूमने के लिए चला जाता था किधर भी, ऐसा पेट्रोल की चिंता नहीं थी उसको, इसके लिए वो घूमता था और उधर उसमें गुनगुनाता था महामंत्र, बस वही उसका धंधा था, और उसको पता नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसा कोई संस्था है। एक दिन अचानक वो उसका मित्र मिल गया उसको, ट्रमी करके उसका मित्र का नाम था, ट्रेसी उसका मित्र था, तो ट्रेसी मिल गया उसको, तो उस बोला कि अरे तेरे को क्या हो गया, तो गुनगुना रहा है, क्या महामंत्र है। और वो ट्रेसी जो था वो इस्कॉन के भक्त के कोई कांटेक्ट में आ गया था, तो कांटेक्ट में आ गया था तो उसको ये पता था सब कि ये संस्था ऐसा है और तू जो गुनगुना रहा है वो तेरे को पता है क्या है वो कृष्ण। तो उसको ऐसा लगा कि वो कृष्ण के बारे में निंदा करेंगे तो वो मुट्ठी भर के ऐसे उसको मारने के लिए तैयार हो गया, जो ट्रेसी को टॉप तो मारने के लिए तैयार हो गया। तो उसको लगा कि ये मेरे को मारेंगे, वो बोले नहीं नहीं तो रुक शांत हो जा, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको तेरे को रास्ता दिखा रहा हूँ। तो उसने बताया कि ये ले कार्ड और उसमें ये किशोर किशोरी मंदिर यानी कि शिकागो में किधर होगा वो मंदिर, उसमें पता लिखा था नीचे, तो पता लिखा था तो उसने देखा तो उसमें लिखा था संडे लव फिस्ट प्रीति भोज, उसमें सबको आमंत्रित किया जाता है। उस टाइम पे 50 लोग काफी ये पे इधर इसमें आया है कि 50 लोग का खाना बनाना था, मतलब कि उस टाइम नया नया ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन था, उसमें कोई आते नहीं थे, वो नहीं आते थे उसकी वजह से उसने ऐसा प्रभुपाद जी ने और उसके शिष्य जो जिसमें लिखे हैं ब्रह्मानंद स्वामी और कीर्तनानंद स्वामी दोनों ने ऐसा सोचा कि हम प्रीति भोज के नाम पे प्रभुपाद जी ने बताया कि हम संडे के दिन लव फिस्ट यानी कि प्रेम का भोजन रखेंगे आदान प्रदान, तो उसने नाम दिया ब्रह्मानंद और कीर्तनानंद स्वामी ने प्रीति भोज, प्रीति भोज नाम दिया। तो उसमें भी कार्ड में लिखा था कि प्रीति भोज के लिए आई आप, तो सोच रहा था कि मैं किधर जाऊँ, लेकिन उसने जिगर किया और दरवाजे में गया, ये किशोर किशोरी मंदिर में गया और दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया तो भक्तों ने देखा कि उसको इतना लगाव था भगवान के प्रति, वो जानने लगा। और बाद में प्रसाद जब आया, प्रसाद ऐसा उसने कहीं नहीं पाया था क्योंकि उधर ये सब मांसाहारी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो ट्रॉम था, वो धीरे धीरे शाकाहारी बन गया था और हिप्पी था, हिप्पी भी बन गया था, बड़ा बड़ा बाल था उसका। तो उसने उस दिन प्रसाद खाया, प्रसाद में खाली हलवा और खिचड़ी ही खाया था, सादा प्रसाद था, लेकिन जीवन भर में कभी ऐसा मैंने प्रसाद नहीं खाया, ऐसा वो बता रहे, कभी मैंने ऐसा प्रसाद नहीं देखा था। तो प्रीति भोज यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन का प्रीति भोज वो महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा। तो उसी तरह वो ऐसे भक्त बन गए धीरे 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 धीरे, और उसका बाल नहीं कटवाया था उसने, और बाल बड़ा था। तो एक दिन ऐसा हुआ वो नौकरी भी करने लगे जो प्लान बनाते उस कंपनी में, तो वो बाल एक दिन वो पीठ घुमा के बैठा था और मशीन में वो बाल उसका सब आ गया, बाल सब पूरा खींच लिया मशीन में। तो उसको ऐसा लगा कि पूरा मेरा खोपड़ी यानी कि खोपड़ी ही निकल गया होगा। उसके बॉस भी आए उधर, लेकिन उसको एक बूंद भी खून नहीं निकला था, एक बूंद भी, इतना पूरा बाल निकल गया, निकलने के बावजूद खून भी नहीं निकला था। तो उसने ऐसा सोचा कि अगर कृष्ण की इच्छा ही है कि मैं टकलू बन जाऊं, जो ये भक्त लोग है वैसा मैं टकलू बन जाऊं, और इसीलिए ही मुझे खून नहीं निकला है। और उसका जो बॉस था वो बहुत चिंतित था, क्योंकि अमेरिका में कोई भी किसी वस्तु को एक छोटी सी अंगुली भी कट जाती है तो लोग करोड़ों डॉलर का दावा मान देते हैं। तो उसको ऐसा डर लगा उसके बॉस को कि ये दावा ठोक देगा या कोर्ट में जाएगा तो मेरा कंपनी भी बंद हो जाएगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा। इसलिए उसने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, टॉम ने ऐसा बताया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऊपर कुछ दावा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि मेरा बाल जो है वो बाल निकल जाए, इसलिए ये हुआ है, ये कोई भगवान की इच्छा ही होगी, इसलिए मैं कोई आपके ऊपर दावा नहीं करूँगा, इसलिए आप चिंता मत करो। ऐसे करके उसने प्रभुपाद जी का जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ था वो धीरे धीरे उसने अपना लिया। अपनाने के बाद वो उसको जो पुस्तक मिली थी श्री कृष्ण, वो उसके मित्र के पास, मित्र नहीं पर सॉरी, वो कुछ मेला लगता था पर्वतों में, ये अपना जो क्रिसमस आता है उसमें, उन लोगों का जो क्रिसमस है उसमें नाताल का मेला लगता है, उसमें वो बेचने के लिए गए उधर, जो प्रभुपाद जी का जो बुक बनाई हुई बुक है भगवत गीता और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सब बेचने के लिए। तो वो जो ट्रेसी था उसको फिर मिला, वो सामने देखते ही रह गए, अरे तू तो हिप्पी था और ऐसे कैसे बन गया, तू तो हिप्पी था, बड़ा बड़ा बाल था और तू टकलू बन गया, मेरे को आश्चर्य लगता है। हालांकि वो ट्रेसी भी इस्कॉन के संपर्क में था, लेकिन भक्तों के बीच में तर्क वितर्क में उसको निकाला गया था। तो उसको चिंता थी कि ये मेरा जो मित्र है वो भी ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भामृत संघ में लगना चाहिए, उसकी ऐसी अंदर की इच्छा थी। इसके लिए उसने समझाया कि तू मेरे साथ मंदिर में आ। बोले नहीं, मेरे को उधर नहीं जमता है, मेरे को उस लोगों ने निकाल दिया, लेकिन तू ये बन गया मेरे को नवाई लगता है। तूने मेरे मैंने तुझे इसीलिए ये कार्ड दिया था कि तू उधर जाके भोजन कर खाली, बाकी कुछ करने का नहीं था, भोजन करने का था, बाकी ये सब टकला करने का, ये भूख वितरण करने का ये क्या जरूरत था। तो उसको नवाई लगा। वो बोले तू ऐसा मत कर, तू भी मेरे साथ चल। और वो लेके गया मंदिर में, मंदिर में लेके गया तो उधर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विष्णुजन स्वामी महाराज दोनों थे उधर, और उसने उसका सब परिचय करवाया और उसने बोला कि मैं उसकी तरह से ही मंदिर में आया हूँ और ये मंदिर से छूट गया है। तो वो लिखते हैं उधर के विष्णु तमाल कृष्ण महाराज जो थे वो हथौड़े के जैसे भारी थे, एकदम कड़क नियम वाले थे, और विष्णु स्वामी महाराज थे वो एकदम गुलाब की तरह कोमल थे, इसलिए उसने उसको भी भक्त बना दिया। देखिए प्रभुपाद जी की जो लीला, मतलब प्रभुपाद जी की जो बुक है उसके ऊपर कितना जोर लगाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत में संघ में जुड़ गया दोनों, और चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है उसमें जोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन का अंग बन गया दोनों। इसलिए प्रीति भोज के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रीति भोज इस्कॉन के महत्वपूर्ण अंग बन जाने चाहिए, ऐसा कि वे बार बार पहले भी बता चुके थे कि कृष्ण को अर्पित भोजन दिव्य या आध्यात्मिक बन जाता है। जो कोई भी उस आचार को ग्रहण करता है उसे महान आध्यात्मिक लाभ होता है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। उनके दोनों सहायक उनकी बगल में आदरपूर्वक खड़े थे। स्वामी जी इधर उधर आते जाते थे तो वे उनके रास्ते से हट जाते थे। कभी वे उनके कंधों के ऊपर से देखने लगते थे कि वे मसाले किस तरह मिला रहे हैं, या आंच पर कड़ाही कैसे रखे हैं, या कब किसी चीज की मांग लेते हैं, किसी चीज को मांग लेते हैं। स्वामी जी लकड़ी की एक बड़ी कड़छी से बड़े पात्र में खीर हिला रहे थे और उसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला रहे थे। खीर को लगातार हिलाते रहना जरूरी था, यदि खीर जल गई तो वह बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने कड़छी कीर्तनानंद को दी। आगे उन्होंने दोनों शिष्यों को बताया कि मक्खन गर्म करके उससे घी कैसे बनाया जाता है, कैसे चिकनाई को मट्ठे से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने शिष्यों को यह भी बताया कि सेब की चटनी कैसे बनाई जाती है। भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे। देखिए भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे, ये पॉइंट जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं माताजी लोग भगवान का भोग बनाने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुंह पे पट्टी नहीं रखते माताजी लोग, और हम बोलते हैं हम आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी जो बोलने की जो शैली है उसमें से थूक निकलता है वो भोग में जाता है, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है भोजन बनाते समय प्रभुपाद मौन थे। ये माताजियों को जो भोजन बनाने आती है, भोग बनाने आती है, उसको सीखना चाहिए कि मौन रहे ज्यादातर, बिना फालतू बात करे भोजन बनाए, भगवान का भोग बनाए। जो किंतु जब ब्रह्मानंद ने उनसे पूछा कि भोजन बनाने के बारे में इतना अधिक कैसे जानते हैं, प्रभुपाद जी को पूछ रहे हैं, उन्होंने बताया कि अपनी माताजी को भोजन बनाते हुए देखते रहने से उन्होंने यह सब सीखा है। वे हंसे और बोले कि यह पश्चिम की तरह नहीं होता है कि मांस का टुकड़ा फ्रिज से निकाला, उसे कड़ाही में डालकर उबाला, उस पर नमक छिड़का और जानकर जानवर की तरह उसे खा गए। ये देखिए पश्चिम की संस्कृति ये है। वो लोग हमारे देश में, तो पहले तो मैं जब छोटा था और मैं सूरत में आया पहली बार, और मैंने मछलियाँ और मुर्गी की दुकान देखी तो मैं शौक गया, क्या ये भारत की संस्कृति है। पहली बार मैंने जब देखा तब ये भारत की संस्कृति है, ये मछलियाँ बिके जा रही है और मुर्गा उल्टा टिंगाया जा रहा है, ये भारत की संस्कृति में मैं शौक गया था पहली बार तो देखा तो। लेकिन बम्बई में आया तो मारे काटे हुए सब सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। फिर भी ये पश्चिम की संस्कृति इधर आ गई है इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ये पश्चिम की संस्कृति की तरह नहीं होता है। देखिए यहाँ, और उन्होंने कहा कि कोरिया में लोग कुत्ते खा जाते हैं। देखिए, कुत्ते का मांस खा जाते हैं, मनुष्य को तो अन्न फल सब्जियां और दुग्धहार ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से गाय का वध तो नहीं ही करना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी हमारे गांव में गया था तो मैंने वहां पे सुना, हमारे गुजरात में, शायद गुजरात में नहीं, शायद तो इंडिया में बड़ी सी बड़ी एक गौशाला, यानी कि गौशाला नहीं, सब ढोर वहां पे रखा जाता है, जानवर, सब जानवर। तो जो पालन करता है वो बहुत बड़े बड़े लोग है, और वो एक संप्रदाय के लोग है, और उसके नाम पे उसको करोड़ों नहीं अब्जो रुपये का दान आता है, और उसके पास कितने माइल जगह है उसको भी पता नहीं है। भावनगर के जो राजा थे उसने वो जगह दे दिया था उसको, वो जगह दिया था फ्री में कि आप ये इतना ढोरवाड़ा चलाते हो, यानी कि पशु का जो पालन करते हो उसके पीछे ये जगह रखो। तो आप नहीं मानोगे, जो ट्रस्टी थे उसमें अभी है, वो ट्रस्टी बहुत बड़े लोग है और पैसे वाला भी है, उसने ये कसाई के साथ में मिला हुआ था, वो उसको किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी ये दो महीने पहले की बात है, दो महीने पहले ऐसा हुआ कि गायों को एक ट्रक में लेके जा रहा था, और वो पांजरा पोल का नाम है, सापरियाली महाजन पांजरा पोल, तो उसके बोर्ड लग जाते हैं। तो हम जैसे यहाँ से है तो हमारा इस्कॉन का बोर्ड होता है तो कोई पुलिस वाला रोकता नहीं है, शायद ऐसा है, वैसा वो सापरियाली महाजन पांजरा पोल है, वहां पे उसका बोर्ड लगा रहता है तो कोई उसका ट्रक रोकता नहीं है। फिर भी एक दिन पुलिस वाले को ऐसा हुआ कि आप लोग रात को किधर लेके जा रहे हो गाय। तो उसने कहा कि भाई ये तो महाजन का पांजरा पोल का है, तो हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। बोले ठीक है, देखने दो तो कौन सा अंदर पशु है। तो बोले नहीं, देखने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा बोला वो ट्रक वाले ने, ट्रक वाला दाढ़ी वाला था, यानी कि मुस्लिम था। तो उसने देखा कि ये बोल रहा है कि उसमें देखने की जरूरत नहीं, जरूर उसमें कुछ काला है। तो उसने देख लिया तो उसमें छोटा सा एक ट्रक, उसमें 35 से 40 गाय भरी थी, 35 से 40 गाय, उसमें से शायद 7-8 तो मर गई थी, एक के ऊपर एक ऐसा। उसने, आप नहीं मानोगे, वो जो ट्रक है उसका और ये जो मुस्लिम था उसका, दोनों का उसमें बंटवारा था, यानी कि भाग था। वो लोग, दूसरे लोग उसके गाय के गौशाला में भेजते थे और वो लोग वहां से सप्लाई करते थे कतल खाना में। और 18,000 गाय उसने बोल दिया, मुस्लिम को मारा, बहुत मारा उसने, वो PSI था, वो बहुत कड़क था, उसने पुलिस वाले को और PSI को सबको बहुत फटकारा, और उसने पकड़ा भी, वो ट्रस्टी था उसको। पहले तो वो नहीं माने, पहले तो बोले मेरे आदमी ने भेज दिया होगा, ऐसा किया होगा, मेरे को पता नहीं है। लेकिन 18,000 गाय कटवा दिया उसने, और वो आज बड़े अहिंसा के नाम से बड़े बड़े वो पांजरा पोल भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक ट्रस्टी की वजह से 18,000 गाय कट गई। देखिए कितना वो लोग बोलते हैं, उसके ट्रस्टी लोग बोलते हैं कि आप कदाश 1800 करोड़ रुपया खा गए होता ना तो हमको रंज नहीं होता, लेकिन 1800 गाय हमारा कट गया, यानी कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और उसने वो केस ऐसा दबा दिया, मीडिया वाले को इतना पैसा दिया कि कहीं भी वो उसका नाम भी नहीं आया। लेकिन हमारा गांव उसके बाजू में ही है, इसके लिए सब गांव वाले को, आजू बाजू वाले गांव वाले, या तो पूरा भावनगर जिले को भी शायद पता चल गया कि ऐसा हुआ। देखिए पश्चिम की संस्कृति, तो यहाँ प्रभुपाद सॉरी सत्यरूप महाराज लिखते हैं, मनुष्य को तो अन्न फल सब्जी और दुग्धहार ग्रहण करना चाहिए, विशेष रूप से गाय का वध तो नहीं ही करना चाहिए। जब ब्रह्मानंद चटनी के लिए सेब के टुकड़े काटकर उन्हें एक बर्तन में डालकर पकाने के लिए भाप पर रख रहा था और कीर्तनानंद खीर हिला रहे थे, उस बीच प्रभुपाद भाप कर फकते सेब के टुकड़े में मिलाने के लिए मसाला तैयार कर रहे थे। जब मसाला छोटे से पात्र में गर्म घी में पटपटाने और धुआं देने लगा तो लाल मिर्ची और जीरे की परिचित गंध तीखेपन के साथ शिष्यों की नासिका रंध्रों में प्रवेश करने लगी। तीन भिन्न भिन्न क्रिया एक साथ चल रही थी, खीर पक रही थी, सेब के टुकड़े भाप पर पक रहे थे और चटनी की का मसाला भुना जा रहा था। इस बीच प्रभुपाद कीर्तनानंद को बराबर चेतावनी देते रहते थे कि वह खीर को निरंतर हिलाता रहे और पात्र का पेंडा भी खुरसता रहे। उन्होंने कीर्तनानंद से 1 मिनट के लिए कड़छी ले ली और उसे करके दिखाया कि खीर को लगातार कैसे हिलाते रहना चाहिए। उन्होंने समझा कर बताया कि भोज के लिए खीर, चटनी और व्यंजन पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, किंतु बहुत सी चीज़ें अगले दिन सुबह बनानी होगी। रात में देर तक जगे रहने पर भी दूसरे दिन प्रभुपाद बड़े तड़के उठ गए। सवेरे की कक्षा लेने के बाद वे रसोई घर में पहुंच गए। जब उनके सामने के कमरे में बैठे करीब आधे दर्जन शिष्य पूड़ियों और समोसों के लिए आटे की लोई बनाने में तत्पर थे, वे उन्हें दिखा चुके थे कि आटा किस तरह गूंथा जाता है। उमापति थोड़ी देर तक मुलायम लोई को अपनी मुठियों से थपथपाकर उसे मांड चुका था, लेकिन ब्रह्मानंद उसे और अच्छी तरह कर सकता था। अपने पहलवानी शरीर का पूरा भाग आटे के बड़े ढेले पर डालकर जब स्वामी जी पुड़ियों की परख के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए तो उनके शिष्य आदरपूर्वक उन्हें देखने लगे। जब प्रभुपाद जी उपस्थित होते तो उनके शिष्य सदा गंभीर बने रहते थे। उन्होंने एक पुड़ी उठाई और उसको परखा। वे बोले, यह अभीष्ट स्तर की नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा। तब वे तोड़ी मरोड़ी बेकार और डेढ़ी मेढ़ी बेली गई पूड़ियों के मध्य अपने सहायकों की बगल में बैठ गए, जो भरसक प्रयत्न के बावजूद गड़बड़ किए जा रहे थे। उन्होंने लोई से एक छोटा सा गोल टुकड़ा लिया और उंगलियों से दबाकर उसे चौड़ा कर दिया और कुशलतापूर्वक उसे तब तक बेलते गए जब तक वह लकड़ी के बेलने के चारों ओर लिपट कर और पूरी गोल शक्ल प्राप्त कर अलग नहीं जा गिरा। उन्होंने उठा लिया और इस तरह लोई का एक अर्धपारदर्शी पतला किंतु अधिक पतला भी नहीं गोल टुकड़ा दिखाते हुए कहा, इस तरह बनाओ, लेकिन जल्दी करो। यह जानकर कि लोई कुछ सख्त है, स्वामी जी ने उससे कुछ घी और थोड़ा दूध डालकर गूंथ दिया, जिससे वह मुलायम हो गई। जो आटा था वो मुलायम हो गया। उन्होंने कहा, हर चीज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उनके शिष्यों ने सभी छोटे छोटे कामों की पूरी निष्ठा से संपन्न किया। उनमें से पूड़ी और समोसा जैसी चीजों के बारे में पहले किसने सुना था? यह सब कुछ नया था और चुनौती महत्वपूर्ण थी। यह भक्ति योग का अंग था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सिखाते थे वे, इसलिए ये भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग था। और भोजन बनाने का अधिकतर कार्य स्वामी ने स्वयं किया, साथ ही वे अपने सहायकों के कामों की निगरानी भी करते रहे। वे सदैव सबके पास थरहे रहे, नंगे पैर कभी वे रसोई घर में आते, कभी सामने के कमरे में और कभी पीछे के अपने निजी कमरे में। और जब वे अपने पीछे कमरे में जाते तब उनके शिष्य दीवार की खिड़की से उन्हें देख सकते थे। स्वामी जी ने करीब एक दर्जन व्यंजनों को उन्हें अंत तक अपनी देखरेख में रखते हुए तैयार कराया और उनके शिष्यों ने एक एक करके पात्रों में रख कर उन्हें सामान में कमरे में ले जाकर भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष रखा। व्यंजनों में हलवा, दाल, दो सब्जियां, अच्छा चावल, पुड़िया, समोसे, खीर, सेब की चटनी और इस्कॉन की गोलियां यानी के गुलाब जामुन, यहाँ पे लिखा है इस्कॉन की गोलियां शामिल थी। प्रभुपाद ने इन गुलाब जामुनों को मंद आंच पर जब तक वे सुनहरे भूरे नहीं हो गए तलते रहने में काफी समय लगाया था। फिर उन्होंने उन्हें छलनी से एक एक करके निकाल कर सिरे में भिगोया था। वे मानते थे कि ये सुनहरे घी में तले सिरे में भीगे हुए दूध के गोले उनके शिष्यों के प्रिय प्रसाद थे। वे उन्हें इस्कॉन की गोलियां कहते थे, क्योंकि वे माया से युद्ध करने में प्रमुख हथियार थे। उन्होंने यहाँ तक अनुमति दे रखी थी कि सामने के कमरे में सिरे से भरा 33 इस्कॉन की गोलियां का वर्तमान रखा रहे। उनके शिष्य बिना उनसे पूछे और बिना नियमित समय का पालन किए जितनी गोलियां चाहे खा सकते हैं। कितनानंद समोसा में भरने के लिए पिथी ले आया। उसने पालक और हरी मटर को ले जैसी का कर तैयार की थी और जिसमें स्वामी जी ने खूब मसाला मिला दिया था। समोसा में पिथी भरना एक कला है और स्वामी जी ने शिष्यों को दिखा कर बताया कि यह कैसे किया जाता है। उन्होंने लोई को अर्धवृत्ताकार बनाकर फिर उसमें कोना निकाला, तब उसे एक चम्मच मसालेदार पिठी से भरा और सिरों को मोड़ा और बंद करके गर्म घी में पकने के लिए छोड़ दिया। अच्युतानंद बे डोल शक्ल की पुड़िया रसोई घर में ले आया, जहाँ उसने और कितनानंद ने दोनों दो दो करके उन्हें खूब तला। यदि घी का तापमान गूंधे आटे की मुलायम इस पुड़ियों का आधार सकल होता है तब ठीक है, तो पुड़िया कुछ ही सैकड़ों में पक जाती है और घी की ऊपरी सतह तक उठ जाती है, जहाँ वे फूल कर छोटे गुब्बारों की तरह हो जाती है। तब रसोई ये उन्हें गते से बने डिब्बे में किनारे पर खड़ा कर देते हैं, जिससे उनसे अतिरिक्त घी निसुड़ जाए। जब भोज की आखिरी तैयारियां पूरी हो गई तो स्वामी जी ने भक्तों ने हाथों में लगे सख्त आटों को धो डाला और वे नीचे स्टोर फ्रंट में गए, जहां चटाइयां बिछा कर अतिथियों की और भोज की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर स्वामी जी ऊपर अनेक एक दो रसोईया ने सभी व्यंजनों को चैतन्य महाप्रभु की परंपरागत स्तुति गान के साथ अर्पित किया। आरंभ के कुछ प्रीति भोज में आने वालों की संख्या अधिक नहीं थी, किंतु भक्तों में भोज के प्रसाद के लिए इतना उत्साह था कि अतिथियों की कभी से उन्हें निराशा नहीं हुई। वे सारे के सारे खाने खा जाने का उद्दत थे। सत्स्वरूप भोज में एक व्यंजन ब्राह्मण स्पाधेति नाम का था, जो चावल के सुरण से बनी गोलियों का घी में पकाकर फिर इन्हें सिरे में रखकर तैयार किया जाता है, और हलवा तले हुए पनीर से युक्त पुष्पान्न चावल, समोसे मूंग की दाल, नमक और मसाले से युक्त पकौड़िया, पुड़िया, गुलाब जामुन, ये सारे व्यंजन थे। प्रत्येक वस्तु रसीली थी। हयग्रीव की विनोदपूर्ण शब्दावली में प्रत्येक वस्तु रसीली थी, यानी कि ये सुनने के बाद भी मुंह में पानी आ जाता है। आज एकादशी है, फिर भी ऐसा लगता है कि क्या प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से वो भोजन बना के दिया होगा और वो उनके शिष्यों ने खाया। वो तो कितना रसीला था वो उसको ही पता होगा। भोज में सम्मिलित होना गहन अनुभव के समान था। आशा की जाती थी कि हम पूरे सप्ताह भर कठोर नियमों का पालन करते हुए अपनी जीवा को नियंत्रित रखते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करें। यह भोजन एक प्रकार का पुरस्कार था। स्वामी जी और कृष्ण हम लोगों को पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का स्वाद सिखाते थे। यद्यपि हम अभी नवसिखिए थे और अभी भी भौतिक जगत में थे, अपनी थाली लेने के पूर्व में प्रार्थना करता, कृपा करके मुझे कृष्ण चेतना में अवस्थित रहने दीजिए, क्योंकि यह कितना उत्तम है और मैं कितना पतित हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा करता हूँ और अब दिव्य आनंद के साथ इस भोजन को ग्रहण करूँ। और तब मैं खाना शुरू करता, एक स्वाद के बाद दूसरे स्वाद का आनंद लेता, अच्छे चावल का, प्रिय तरकारियों का और रोटी का, गुलाब जामुनों को मैं अंत के लिए छोड़ रखता, यह सोचकर कि उन्हें दोबारा या तिबारा भी ले सकूंगा। हमारी आंखें बड़े बड़े पात्रों पर लगी रहती थी और हम अस्वस्थ रहते थे कि इच्छानुसार खाने के लिए पर्याप्त है। यह समय पूर्ण समर्पण का होता, पूर्ण समर्पण का होता। हम सभी मुक्त स्वाद और इंद्रिय तृप्ति का लाभ उठाते। भोजन बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे अतिथियों की उपस्थिति बढ़ती गई। भोजन निःशुल्क थे और उनका स्वादिष्ट होना प्रसिद्ध हो चला था। अधिकतर स्थानीय हिप्पी आते थे, किंतु यदा कदा प्रयोग के लिए न्यूयॉर्क के उच्चतर वर्ग के लोग या फिर भक्तों में से किसी के माता पिता भी आते थे। जब छोटा सा मंदिर भर जाता था तो अतिथिगण आंगन में जा बैठते। वे प्रसाद से भरी कागज की तस्तरी और लकड़ी का चम्मच लेकर पीछे के भाग में चले जाते थे और अग्नि बचाव सीढ़ी की बगल में या पिकनिक की मेज पर या अन्यत्र बैठ जाते थे। खाने के बाद वे और लेने के लिए स्टोर फ्रंट में पुनः आते। भक्त प्रसाद पात्रों के पीछे खड़े रहते और अतिथि दूसरी बार लेने के लिए उनके पास आते थे। अन्य किराएदारों को आंगन का इस प्रकार उल्लासमय अतिथियों से भरा जाना अच्छा न लगता, अतः भक्तजन उन्हें शांत करने के लिए प्रसाद से भरी प्लेट लाकर उनको देते थे। बहुत विरोध होता था। प्रभुपाद जी ये प्रीतिभोज शुरू किया तब उधर बहुत विरोध होता था। इसके लिए उसके जो शिष्य थे वो दूसरों को प्लेट बना बना कर उसके घर में दे देते थे, क्योंकि वो हमारे जो प्रोग्राम होता था प्रभुपाद जी का उसमें बाधा न डाले, इसके लिए भरे भरे प्लेट देते थे। यद्यपि स्वामी जी नीचे मंदिर में नहीं जाते थे, किंतु एक प्लेट लेकर वे अपने कमरे में चले जाते थे और वहीं से अपने नवीन कार्यक्रम की सफलता के बारे में प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहते थे। एक बार भक्तजन ऐसे भूखमरों की तरह खा रहे थे। देखिए ये सुनने लायक है हमारे लिए। एक बार भक्तजन ऐसे भूखमरों की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना सब कुछ अपने आप ही खा जाएंगे। ये बहुत सुनने लायक बात है। ये एक बार भक्तजन ऐसे भूखमरों की तरह खा रहे थे कि मालूम होता था कि अतिथियों को खिलाए बिना हम अपने आप ही खाएंगे। भक्तों को ऐसा लगता था कि हम ही खा जाए, लेकिन प्रभुपाद उसमें खुश नहीं थे, इसलिए उसने बताया। अतः कीर्तनानंद को उनसे इस स्वार्थपूर्ण रवैये के लिए उन्हें डांटना पड़ा था। धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि रविवारी भोज केवल उनके विनोद और आनंद के लिए न होकर लोगों को कृष्ण चेतना की ओर लाने के लिए होते थे। ये प्रीति भोज जो भगवान श्री कृष्ण के शरणारविंद में लोग कैसे आए और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में कैसे जुड़े, उसके लिए प्रभुपाद जी ने ये योजना शुरू की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पहले बताया कि टॉम कैसे जुड़ा था, यानी कि उसका दीक्षार्थी नाम बाद में हुआ त्राणकर्ता प्रभु, आज भी वो है। और कैसे जुड़ा प्रीति भोज से, कैसे उसको लगाव आया, उसके बारे में आपको मैंने पहले बताया। तो उसी तरह हम भी दूसरे को यहाँ पर ला सकते हैं प्रीति भोज में, रविवारी कार्यक्रम में, और हर संडे इतना प्रीति भोज प्रभुपाद जी ने शुरू किया तो उसमें हम प्रयास कर सकते हैं कि नए लोग को कैसे लाए। और उसमें अंत में सत्स्वरूप महाराज ने बताया कि वो लोग जो भक्त थे वो खाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भूखमरे के जैसे नहीं खाना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ये बात हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे प्रभुपाद जी का लीलामृत। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री
आपको तीन बार इधर ही देना, जाना नहीं, कोई है नहीं ना, कीर्तन करना, खुद जाना।